एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथसार में आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं, एक दुनिया जो अब खो चुकी है, लेकिन साहित्य की दुनिया में वो हमेशा जिंदा रहेगी।
हाँ बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं आइजैक बाशेविस सिंगर के कालजयी उपन्यास द फैमिली मॉस्केट की।
और आइजैक बाशेविस सिंगर मतलब 20वीं सदी के कितने महत्वपूर्ण यहूदी अमेरिकी लेखक थे वो।
हाँ, पोलैंड में जन्म हुआ 1904 में एक रब्बी परिवार में, फिर 1935 में अमेरिका चले गए।
बिल्कुल, और उनकी जड़ें थीं उस पारंपरिक पूर्वी यूरोपीय यहूदी संस्कृति में, लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं आधुनिक अमेरिकी साहित्य में भी उतनी ही गहरी पैठ बनाई। एक पुल के तरह थे वो।
सही कहा, और कमाल की बात ये कि उन्होंने अपना ज्यादातर काम यिडिश भाषा में किया।
हाँ, जो उस समय पूर्वी यूरोपीय यहूदियों की आम जबान थी।
और उनकी कहानियों में यथार्थ तो होता ही है, पर कभी कभी थोड़े अलौकिक तत्व भी आ जाते हैं। गहरे नैतिक सवाल, इंसान की कश्मकश, और हाँ, थोड़ा हास्य भी मिलता है।
बिल्कुल, और 1978 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, वो पहले यिडिश लेखक थे जिन्हें ये सम्मान मिला। इससे उनके कद का अंदाजा लगता है।
निश्चित रूप से, और ये किताब द फैमिली मस्केट ये अंग्रेजी में आई 1950 में।
हाँ, हालांकि यिडिश में तो ये 1945 से ही धारावाहिक रूप में छप रही थी। इसे उनकी सबसे बड़ी मतलब मैग्नम ओपस कृति माना जाता है।
सोचिए, समय क्या था, दूसरा विश्व युद्ध बस खत्म ही हुआ था, और ये उपन्यास उस यहूदी जीवन की तस्वीर खींच रहा था जो हॉलोकॉस्ट में लगभग तबाह हो चुका था।
तो ये एक तरह से सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक खोई हुई दुनिया का साहित्यिक स्मारक है।
एक पूरी तहजीब का अक्स। आज हम इसी महागाथा के ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी कहानी, इसके किरदार, उनकी उलझी हुई जिंदगियां, और वो गहरे सवाल जो ये आज भी उठाती है।
हाँ जरूर।
तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये मॉस्केट परिवार की कहानी है क्या, किस बारे में ही उपन्यास?
देखिए, ये वॉर्सा शहर में बसे मस्केट नाम के एक बहुत अमीर और रसूखदार यहूदी खानदान की कहानी है। एक महाकाव्यात्मक परिवारिक गाथा कह सकते हैं।
और समय कब की कहानी है ये?
कहानी 19वीं सदी के आखिर से शुरू होती है और 1939 तक चलती है, तो मतलब करीब 50-60 साल का एक लंबा दौर है इसमें। हम इस खानदान को इसके शिखर पर भी देखते हैं और फिर धीरे धीरे इसके बिखराव को भी।
अच्छा, परिवार के मुखिया का जिक्र जरूरी होगा।
हाँ बिल्कुल, वो है मेशुलम मस्केट, एक बहुत दबंग पुराने ख्यालात के धर्मनिष्ठ लेकिन बेहद कामयाब व्यापारी। वो उस पारंपरिक व्यापारी वर्ग के प्रतीक हैं।
तो इस एक परिवार के जरिए सिंगर एक पूरे दौर का एक तरह से नक्शा खींच देते हैं, उस बदलते हुए पोलिश यहूदी समाज का।
पर एक यहूदी जिंदगी जो सदियों से चली आ रही थी, उस पर आधुनिकता का दबाव बढ़ता है।
आधुनिकता का दबाव मतलब किस तरह का दबाव?
कई तरह का, जैसे धर्मनिरपेक्षता बढ़ रही है, लोग धर्म से दूर हो रहे हैं, फिर नई राजनीतिक विचारधाराएं आ रही हैं, समाजवाद है, जायोनीवाद है।
अच्छा,
कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो पोलिश समाज में पूरी तरह घुल मिल जाएं, आत्मसात हो जाएं, और इन सब के ऊपर आखिर में नाजीवाद का वो भयानक खतरा मंडराने लगता है।
बाप रे, तो ये एक तरह से पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच की टक्कर है, आस्था, परंपरा बनाम तर्क, आजादी।
हाँ बिल्कुल, एक महाकाव्यात्मक संघर्ष है ये। और सिंगर एक बहुत बुनियादी सवाल पूछते हैं कि जब सदियों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक नींव हिलने लगती है, तो एक समुदाय का और उसके अंदर के व्यक्तियों का क्या होता है?
उनकी पहचान का क्या होता है?
हाँ, उनकी पहचान कैसे बदलती है? क्या वो जड़ों को छोड़ पाते हैं या कहीं बीच में ही अटक जाते हैं?
इस बड़ी फैली हुई कहानी में कोई ऐसा किरदार है जो इन सब धागों को जोड़ता हो, जिसके जरिए हम इस बदलाव को ज्यादा करीब से महसूस कर सकें?
हाँ, एक है असा हेशल बेनेट, एक नौजवान है, छोटे से यहूदी गांव मतलब स्टेटल से आया है, गरीब है पर पढ़ा लिखा है, विद्वान है।
अच्छा,
वो ज्ञान की तलाश में वॉर्सो आता है और किसी तरह इस मस्केट खानदान के चक्कर में पड़ जाता है, उनसे उलझ जाता है।
तो उसकी कहानी अहम है
बहुत, क्योंकि उसके जो अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक संघर्ष है ना, वो उस दौर के बड़े संकट को दिखाते हैं। वो खुद परंपरा और आधुनिकता के बीच फंसा हुआ है।
परंपरा यानी जैसे हसिदिक यहूदी धर्म?
हाँ, वो उसी माहौल में पला बड़ा है, लेकिन फिर उस पर हसकाला यानी यहूदी प्रबोधन का असर होता है, स्पिनोजा जैसे दार्शनिकों को पड़ता है।
स्पिनोजा, हाँ।
तो वो आस्था और तर्क के बीच झूलता रहता है, सच की तलाश करता है, पर उसे कहीं कोई ठोस जवाब या सुकून नहीं मिलता।
तो वो एक तरह से उस दौर के भटके हुए बुद्धिजीवी का प्रतीक बन जाता है।
बिल्कुल, उसकी कहानी एक चरासदी जैसी है। वो एक जड़हीन बुद्धिजीवी है, दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ। उसकी ये जो अनिर्णय की स्थिति है ना, मतलब आस्था हो, करियर हो, प्यार हो, वो किसी चीज के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाता।
ये तो वाकई दुखद है, जैसे दो डूबती नावों पर पैर रखे हों।
हाँ, कुछ ऐसा ही। उसकी यात्रा हमें दिखाती है कि जब पुरानी जड़ें कट जाएं और नई जमीन ना मिले तो इंसान की क्या हालत होती है।
चलिए अब जरा परिवार के मुखिया पर वापस आते हैं। मैशुलम मॉस्किट, वो किस चीज का प्रतीक है? आपने कहा पारंपरिक।
हाँ, मैशुलम पुरानी दुनिया के प्रतीक हैं। ताकतवर, धर्मनिष्ठ, अमीर, थोड़े तानाशाह भी। वो एक तरह की निश्चितता दिखाते हैं।
लेकिन उनकी भी सीमाएं होंगी।
बिल्कुल। और उपन्यास भी, जब वो बूढ़े होते हैं और फिर उनकी मौत होती है, वो कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। जैसे उनके जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं गया, बल्कि वो पूरी पुरानी व्यवस्था ही चरमराने लगी।
उनकी मौत के बाद क्या होता है? परिवार में क्या बदलाव आते हैं?
वहीं से बिखराव तेज हो जाता है। मैशुलम के जाने के बाद जायदाद को लेकर भयानक झगड़े शुरू होते हैं।
अच्छा।
और पता चलता है कि उनकी एक छुपी हुई दूसरी पत्नी भी थी, और एक विवादित वसीयत भी। इससे खानदान में फूट पड़ जाती है। उनकी मौत जैसे एक संकेत है कि अब वो पुरानी अटल दुनिया ढह रही है और नई दुनिया की अराजकता दरवाजे पर है।
और हमारा केंद्रीय पात्र आशा हेशल, उसकी जिंदगी इस बिखराव के बीच कैसे चलती है? उसके रिश्तों का क्या होता है?
आशा की जिंदगी तो आप कह सकते हैं कि मोहभंग की एक लंबी नीचे की ओर जाती हुई यात्रा है। वो ज्ञान खोजता है, स्पिनोजा में सच ढूंढता है, पर आराम नहीं मिलता। उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी शायद यही है कि वो फैसले नहीं ले पाता। लकवाग्रस्त अनिर्णय।
आपने प्रेम का जिक्र किया था, आशा के जीवन में महिलाएं,
हदासा और एडल शायद,
हाँ, दो बहुत महत्वपूर्ण महिलाएं हैं, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। हदासा जो है वो मैशुलम की पोती है, वो एक तरह से मासूमियत, रोमानी प्रेम, आदर्शवाद का प्रतीक है।
लेकिन वो भी फंसी हुई है।
हाँ, वो भी परंपरा और अपनी आधुनिक इच्छाओं के बीच फंसी हुई है। उसे आशा से बहुत गहरा प्यार है, लेकिन परिवार वाले उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और कर देते हैं। उसकी आत्मा जैसे कुचल दी जाती है।
यानी परंपरा के लिए व्यक्तिगत खुशी का बलिदान।
बिल्कुल, वो इस त्रासदी का प्रतीक है। सालों बाद जब वो आशा से दोबारा मिलती भी है, तो वो मुलाकात सिर्फ इस बात का एहसास कराती है कि क्या खो गया है।
और दूसरी महिला एडल, वो कैसी है?
एडल जो है वो हदासा की चचेरी बहन है और आशा की पत्नी बनती है। वो ज्यादा दुनियादार है, कामुक है, महत्वाकांक्षी है, आधुनिक है। वो पुलिस समाज में घुलने मिलने की कोशिश करती है, उस आत्मसातकरण के वादे में कुछ खोजती है।
लेकिन उसकी शून्यता भी सामने आती है। उसका और आशा का विवाह एक तरह की इच्छा शक्ति की लड़ाई बन जाता है। वो रुतबे और आराम में खुशी ढूंढती है, पर दुखी रहती है।
तो एडल का किरदार ये दिखाता है कि परंपरा छोड़ देने से भी जरूरी नहीं कि कोई मतलब या खुशी मिल ही जाए।
हाँ, बिल्कुल। वो ये दिखाती है कि आधुनिकता का रास्ता अपनाने की भी अपनी जटिलताएं हैं, अपना खालीपन है। इनके अलावा और भी कई पात्र हैं, जैसे कोपल बर्मन, मैशुलम का मैनेजर। वो बहुत चालाक है, सिद्धांतों की परवाह नहीं करता, बस मौके का फायदा उठाकर ऊपर चढ़ता जाता है।
हाँ, वो सर्वाइवर टाइप।
हाँ, बिल्कुल। और मैशुलम के बच्चे जैसे अब्राम, लिया, न्यूनी, ये सब अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, अलग अलग विचारधाराओं से जुड़ते हैं। ये सब मिलकर उस समाज की एक बहुत जटिल और सच्ची तस्वीर पेश करते हैं।
ये किरदारों का जाल तो वाकई बहुत घना और पेचीदा है। अच्छा, अब जरा कहानी के बहाव पर आते हैं। ये 50-60 साल की कहानी, ये आगे कैसे बढ़ती है? इसके मुख्य चरण क्या हैं?
कहानी को हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला चरण, मान लीजिए 1880 से 1900 के आसपास का, ये मैशुलम का दौर है। परिवार अपने शिखर पर है। इसी समय आशा हेशिल वारसो आता है
और प्रेम त्रिकोण शुरू होता है।
हाँ, आशा, हदासा और एडल का। बाहर से सब शानो शौकत है, पर अंदर ही अंदर सड़न के संकेत मिलने लगते हैं। परंपरा और आधुनिकता का तनाव यहीं से बनना शुरू होता है।
ठीक है, फिर दूसरा चरण।
दूसरा चरण है मैशुलम की मौत के बाद का, लगभग 1900 से 1910 तक। ये एक निर्णायक मोड़ है। जैसा हमने कहा, वसीयत और जायदाद पर परिवार टूट जाता है, आसा एडल से शादी कर लेता है, हदासा का दिल टूटता है। ये नैतिक और आर्थिक विघटन की शुरुआत है।
और युवा पीढ़ी?
युवा पीढ़ी आधुनिकता की तरफ जा रही है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, राजनीति, उनका झुकाव उस तरफ बढ़ रहा है।
और फिर आता है पहला विश्व युद्ध का दौर, 1910 से 1920।
हाँ, तीसरा चरण। इसमें युद्ध की उथल पुथल है, क्रांति है, परिवार पूरी तरह बिखर जाता है। बहुत से सदस्य वारसों छोड़ देते हैं। आशा का अकेलापन और अलगाव और गहरा हो जाता है।
युद्ध के बाद पोलैंड आजाद हुआ, उसका क्या असर पड़ा?
पोलिश स्वतंत्रता के बाद यहूदियों पर राष्ट्रवाद का एक नया दबाव बनता है। परिवार के सदस्य अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। कोई जायोनी बन जाता है, कोई साम्यवादी, कोई पूरी तरह पोलिश समाज में घुलने मिलने की कोशिश करता है।
लेकिन ज्यादातर को निराशा ही मिलती है।
हाँ, अक्सर मोह भंग ही हाथ लगता है। और इसी दौर में उनका पश्तैनी घर, जो परंपरा का प्रतीक था, वो बिक जाता है। पात्र ज्यादातर दिशाहीन लगते हैं।
ये तो बहुत बिखराव है। और फिर चौथा चरण,
1920 और 30 का दशक।
हाँ, ये अंतर्युद्ध काल है और शायद सबसे अंधकारमय दौर। यहूदी विरोध बढ़ रहा है, आर्थिक कठिनाइयां हैं, परिवार का विघटन जारी है, आशा के रिश्ते और बिगड़ते हैं, और जर्मनी में नाजीवाद का उदय एक भयानक साये की तरह पूरी कहानी पर छाने लगता है।
इसी दौर में आशा और हदासा की वो मुलाकात होती है।
हाँ, एक बहुत ही हृदय विदारक पुनर्मिलन होता है उनका। अब आसन विनाश की भावना बहुत प्रबल हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे भागने के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं। और फिर?
हाँ, अंत 1939।
हाँ, चरमोत्कर्ष
1939 में पोलैंड पर जर्मन हमला, वॉरसॉ की घेराबंदी, वो पूरी दुनिया जिसे सिंगर ने इतने विस्तार और बारीकी से रचा था, वो बस कुछ ही दिनों में मलबे में बदल जाती है।
आखिरी दृश्य आपने बताया था।
हाँ, बहुत ताकतवर। बमबारी हो रही है, आशा एक तहखाने में है और उसका एक साथी उससे कहता है वो पंक्ति, मृत्यु ही मसीहा है।
डेथ इज द मसाया, रोंग बिलोड़े कर देने वाला अंत। इतनी बड़ी कहानी, इतने सारे जीवन, इतना लंबा सफर, आखिर सिंगर इसके जरिए कहना क्या चाहते हैं? कौन से मुख्य विषय या संदेश हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं?
देखिए, सबसे बड़ा और केंद्रीय विषय तो वही है, आधुनिकता के सामने परंपरा का पतन। ये सिर्फ मॉस्कैट परिवार की कहानी नहीं है, ये उस पूरे पूर्वी यूरोपीय यहूदी जगत के विघटन का एक रूपक है।
पुरानी निश्चितताओं का, समुदाय के सहारे का खो जाना।
हाँ, और बदले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो मिली, पर साथ ही एक आध्यात्मिक खालीपन, एक जड़हीनता भी आई।
और आशा हेशल के जरिए ये सवाल भी कि जब ईश्वर या परंपरा पर से विश्वास उठ जाए तो इंसान अपनी जिंदगी का अर्थ कहाँ तलाशे।
बिल्कुल, ये आशा का अस्तित्ववादी संकट है और शायद कुछ हद तक आधुनिक मनुष्य का भी। आस्था के बिना, जड़ों के बिना, आधुनिक बुद्धिजीवी अक्सर खुद को भटका हुआ पाता है।
उपन्यास में प्रेम, वासना और विवाह को भी बहुत बिना लाग लपेट के दिखाया गया है।
हाँ, बहुत ही असंवेदनशील नजरिया है। आदर्श प्रेम बहुत नाजुक है और अक्सर अधूरा रह जाता है। वासना विनाशकारी साबित होती है और जो व्यवहारिक विवाह होते हैं वो अक्सर अंदर से असंतोष जलक और खोखले होते हैं।
यहूदी पहचान का मुद्दा भी लगातार चलता रहता है ना, धर्म से परे भी उसकी जटिलता।
हाँ, यहूदी पहचान कैसे बदल रही है, कैसे वो सिर्फ धार्मिक रिवाजों तक सीमित नहीं है, आधुनिक दुनिया में उसके क्या रूप है, ये सब बहुत जटिलता से दिखाया गया है।
और इतिहास और विनाश की अनिवार्यता का एहसास, ये भी बहुत गहरा है।
हाँ, वो नाटकीय विडंबना, हम पाठक जानते हैं किसके बाद होलोकॉस्ट आने वाला है। ये ज्ञान पूरी कहानी को एक दुखद रोशनी में दिखाता है। हमें किरदारों की उस अनभिज्ञता पर तरस आता है। ये जीवन की क्षणभंगुरता सभ्यता की नाजुकता को उजागर करता है।
और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये किरदार अपनी नियति के स्वामी हैं या सिर्फ इतिहास के मोहरे? वो बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें करते हैं पर चलते अपने जुनून या हालात के हिसाब से हैं।
हाँ, नियति बनाम स्वतंत्र इच्छा का सवाल। क्या हम वाकई अपने फैसले खुद लेते हैं या हम इतिहास और अपनी अंदरूनी मजबूरियों के हाथों में बंधे हैं? सिंगर इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते, पर यह सवाल लगातार बना रहता है।
इतने बड़े कैनवास को समेटने के लिए सिंगर की कहानी कहने की शैली भी बहुत खास होगी। उसे क्या चीज विशिष्ट बनाती है?
हाँ, उनकी शैली, वो एक सर्वज्ञ कथावाचक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो कहानी ऊपर से देख रहे हैं, अलग अलग किरदारों के दिमाग में घुस सकते हैं, उनके विचारों, भावनाओं को बता सकते हैं।
लेकिन आवाज में थोड़ी दूरी भी रहती है।
हाँ, सहानुभूति है, पर वो तटस्थ रहते हैं, फैसला नहीं सुनाते। विहंगम दृश्य मिलता है हमें, जो शायद उस बिखराव को भी दर्शाता है।
और कहानी का ढांचा कैसा है? क्या वो एक सीधी रेखा में है?
नहीं, ये एक इतिवृत्त जैसा है, कई दशकों में फैला हुआ, जैसे एक खानदान का इतिहास लिखा जा रहा हो। समय के साथ कहानी का वजन बढ़ता जाता है। सिंगर प्रतीकों का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जैसे वॉर्सो शहर खुद, जो संस्कृति का एक बर्बाद होता दिल बन जाता है, या मस्कैट का पुराना घर, जो ढहती भी परंपरा का प्रतीक है।
आईने, खिड़कियां, इनका भी जिक्र था।
हाँ, ये सब पहचान और सीमाओं के प्रतीक हैं। और भाषा, हम तो अनुवाद पढ़ते हैं, पर कहा जाता है कि मूल यिडिश में भाषा में एक खास लय, एक खास सांस्कृतिक रंगत है, जो सिंगर के लेखन की पहचान है।
और पूर्वाभास हॉलोकॉस्ट का?
हाँ, नाटकीय विडंबना के साथ साथ वो आने वाली तबाही के सूक्ष्म संकेत भी देते जाते हैं, पाठकों ने पकड़ सकता है।
कुल मिलाकर ये उपन्यास पाठक पर कैसा प्रभाव छोड़ता है, ये क्यों आज भी इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका असर बहुत गहरा होता है।
एक गहरा विषाद महसूस होता है, एक नॉस्टैल्जिया उस खोई हुई दुनिया के लिए, युद्ध से पहले के वारसो के लिए, और किरदारों के लिए दया और सहानुभूति भी।
हालांकि उनमें बहुत खामियां हैं।
हाँ, वो त्रुटिपूर्ण है, पर मानवीय है, और उनकी आने वाली तबाही के प्रति उनकी अनभिज्ञता देखकर दुख होता है। एक एहसास होता है कि सभ्यता कितनी नाजुक चीज है, कैसे सब कुछ बिखर सकता है,
और ये बड़े सार्वभौमिक सवाल उठाती हैं।
बिल्कुल, आस्था, पहचान, अर्थ की खोज, ये सवाल हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। ये उपन्यास एक तरह से उस खोई हुई दुनिया और उसके लोगों के लिए एक साहित्यिक श्रद्धांजलि है, जैसे मृतकों के लिए पढ़ी जाने वाली प्रार्थना कदीश। ये दिखाता है कि इतिहास की बड़ी ताकतें कैसे आम इंसानों की जिंदगी को रौंद देती हैं।
तो अंत में अगर हम सोचे कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है या आज भी क्यों प्रासंगिक है?
शायद ये हमें याद दिलाती है कि हमारा निजी जीवन, हमारी व्यक्तिगत कहानियां इतिहास के बड़े प्रवाह से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं, और कैसे परंपरा और आधुनिकता के बीच का वो संघर्ष, वो हर पीढ़ी के लिए एक चुनौती है, बस उसके रूप बदलते रहते हैं।
और ये भी कि जब पुरानी निश्चितताएं टूटती हैं, जब दुनिया बदल रही होती है, तो उस अनिश्चितता के दौर में अपनी पहचान और जीवन का अर्थ खोजना, ये एक सतत मानवीय यात्रा है।
ये जद्दोजहद कभी खत्म नहीं होती।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।